हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम शरद पूर्णिमा के महोत्सव के अवसर पर हम आप सबको स्वागत करते हैं। जब मैं सैफ्रन कपड़ा लिया था उस समय एक महाराज जी आए थे, उनका नाम है सुखदेव महाराज। मैं उनके पास गया था आशीर्वाद मांगने के लिए, महाराज जी अभी मेरा सैफ्रन कपड़ा मिला है, आप आशीर्वाद दो कि हम अच्छे भगवान के भक्त बने। तो उन्होंने एक छोटा सा उपदेश दिया मुझे, उन्होंने बोला राधे राधे कहो छोटे बन के रहो, ऐसे उपदेश दिया उन्होंने। तो मैंने उनको इसका मतलब पूछा, मैंने क्या इसका मतलब है, तो बता रहे थे कि तुम देखोगे कि वृंदावन के हर पेड़ में श्री राधे नहीं तो जय श्री राधे ऐसे लिखा है। तो बता रहे थे कि वृंदावन में ब्रजवासी लोग श्रीमती राधा रानी को ज़्यादा पूजा करते हैं, कृष्ण को कम। कारण क्या है वो बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी इतने उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, ऐसे कृष्ण कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो उनके जो भगवान के ऊपर दिव्य प्रेम जो है, भक्ति भावना जो है, वो उसका सीमा ही नहीं है। तो इसलिए हालांकि भगवान कृष्ण बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ति आप्रयच्छति, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के प्रवचन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जो भी अर्पण करते हैं हम श्रीमती राधा रानी के पद कमल में अर्पण करते हैं, और राधा रानी भगवान कृष्ण को अर्पण कर सकती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के हृदय की भावना, जो भक्ति भावना है, उसको बड़े बड़े गोस्वामी लोग वृंदावन में जो रहते हैं वो भी लोग उसको समझने के लिए इतने उन्होंने शास्त्रों के श्लोकों का वर्णन किया है और उनके जो प्रेम है उसको प्रेम, स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग इत्यादि, और इस तरह राधारानी की जो भी कथन है कृष्ण के संबंध में उसको लेकर गोस्वामी ने उसकी गुणगान की है। तो बता रहे थे कि ये श्रीमती राधारानी जो है, हालांकि वो सबसे महान भक्त है, लेकिन वो सोचते हैं अपने आप के बारे में कि मैं सबसे छोटे हूँ, मेरे भक्ति जो है बहुत छोटा है। और वह दूसरे भक्तों के हृदय में जो भक्ति भावना है उसको देखकर हमेशा वो प्रशंसा करती है इस तरह। तो वो ऐसे बता रहे थे कि जो भी वैष्णव बनना चाहते हैं, भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बता रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण गुण हमारे में क्या होना चाहिए, वो नम्रता। और वो बता रहे थे कि इस तरह हम छोटे बन के रहेंगे और राजे रहते कहते रहेंगे तो हम कभी कभी समय आएगा हम कि भक्ति भावना क्या है हम समझेंगे, कभी ऐसे बता रहे थे। और वो ये भी एक बता रहे थे कि ये जो राधा कृष्ण की लीला और राधा कृष्ण और गोपियों की लीला जो है, इसको साधारण जन कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछते हैं उनके एक प्रवचन में, वो बोलते हैं कि अगर परब्रह्म को प्राप्त करना है, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह जो ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं हिमालय में जाकर बैठकर अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि ऐसे करते 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 ये दुनिया को नकार कर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए वो लोग इस तरह का ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्म में ध्यान करने वाले ज्ञानी लोगों को भी इस भौतिक दुनिया के सब भौतिक भोग विलासों को त्यागना होता है, जैसे स्त्री, जैसे पैसे, सोना, चांदी, जमीन, अपने सब धन संपत्ति इत्यादियों को त्याग कर पूर्ण रूप से विरक्त होकर एक सन्यासी बनकर, यति बनकर वो लोग हिमालय में जाते हैं, है ना? और अगर एक साधारण इंसान को इस दुनिया के सब विषयों को छोड़ छाड़ कर उसके बाद वैराग्य को प्राप्त करके हिमालय में जाकर ध्यान करके अगर परब्रह्म को प्राप्त करना है, तो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कैसे साधारण स्त्रियों के साथ उसी भोग विलास में लगेंगे अपने आप को जिसको ज्ञानी लोग भी त्यागते हैं, ऐसे प्रभा जी पूछते हैं उनके एक प्रवचन में। तो ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है प्रभुपाद जी के। इस तरह का एक प्रश्न सुखदेव गोस्वामी भी पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि ये इनको बता रहे हैं, हमारे परीक्षित को वो बता रहे हैं कि देखो भगवान के भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करके क्या करते हैं, सारे दुनिया में वो घूमते हैं स्वच्छंद होकर, किसी भी तरह की आसक्तियों में ना फंस कर, वो सारे दुनिया में घूमकर वो दूसरे लोगों को भगवान के नाम का वितरण करते हैं, भगवान की कथाओं का वितरण करते हैं, है ना? लोग ऐसे करते हैं, लेकिन उनके शुद्धता का मर्म क्या है, क्योंकि भगवान को अपने हृदय में उन्होंने धारण किया है। अगर जो व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करके इतने शुद्ध जीवन, ऊंचा विचार, सरल जीवन, ऊंचा विचार, ऐसे जीवन जी सकता है इस दुनिया में कोई भी इंसान, जो इस भौतिक दुनिया के वासनाओं से ऊपर उठकर इस भौतिक दुनिया के माया के जगमगाने वाले दुनिया के माया के अनेक प्रलोभनों को छोड़कर उसके ऊपर उठकर हमेशा अपने हृदय को भगवान के दिव्य लीलाओं में, कथाओं में, नामों में डूबे रखकर अगर कोई व्यक्ति जी सकता है, कोई इंसान, तो जिन भगवान को अपने हृदय में पकड़ कर रखा है वो कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? ऐसे प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी। इसलिए ये राधा कृष्ण लीला जो है इसको तभी कोई समझ सकते हैं जब वो 100% पूर्ण तरीके से इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठते हैं, इंद्रिय तर्पण से। जितना हद तक हम इस भौतिक दुनिया के स्वार्थ भावना के साथ हम इंद्रियों को तर्पण में हम लगे हैं, उतना हद तक इसको हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए नर्तमदास कहते हैं, विषयाचारिया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हरिबो श्री वृंदावना। ऐसे गाते हैं, वो बोलते हैं कि कब मेरे सब विषय वासनाओं के प्रति जो आसक्ति है वो कब खत्म हो जाएगा, कब मेरे आंखों में मैं वृंदावन को मैं देख पाऊंगा, ऐसे वृंदावन का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, कब मेरे हृदय में मुझे वृंदावन प्रवेश होगा, इस तरह वो प्रार्थना करते हैं ऐसे। इसलिए ये कंडीशन है, शर्त है। क्या है शर्त समझने के लिए, सब विषय वासनाओं से व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, तभी वो भगवान के लीलाओं को का आस्वादन वो कर सकते हैं। ऐसे बताते हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप ये एक बहुत बड़े आदमी के बारे में आप जानकारी चाहिए आपको, अगर आप उसके अंतरंग विषयों के बारे में आप जानना चाहते हैं, अब उदाहरण है जैसे श्री मनमोहन सिंह जी, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या सब्जी खाते हैं, क्या कपड़े पहनना चाहते हैं, इनको क्या क्या गेम्स जो क्या क्या खेल कूद में आनंद मिलता है, इनको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है, अगर आप जानना चाहते हैं, नहीं तो ये अपने पत्नी के साथ क्या बात करते हैं, अपने बेटे बेटियों के साथ क्या बात करते हैं, अगर ये सब समझना है तो पहले हमें इतना तक मालूम होना चाहिए कि श्री मनमोहन सिंह जी कौन है, है ना, है ना, किसके मालूम होना चाहिए ना पहले, वो कौन व्यक्ति है वो पहले, इतना तक के मालूम होना चाहिए पहले। इस तरह प्रभुपाद जी बता देंगे, अगर कृष्ण के अंतरंग लीलाओं के बारे में समझना हो किसी व्यक्ति को, पहले उनको तो मालूम होना चाहिए कि कृष्ण कौन है। जो व्यक्ति सोचते हैं कि कृष्ण एक राजनीतिक व्यक्ति है, कृष्ण एक कूटनीति करने वाले हैं, कृष्ण एक राजा थे, नहीं तो कृष्ण थे कि नहीं पता नहीं हमें, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण ऐसे ही कुछ गाय चराने वाले थे, कुछ लोग बोलते हैं वो वैश्य हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो क्षत्रिय हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें पता नहीं है, और कोई 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 व्यक्ति बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ यौगिक शक्तियाँ थे, ऐसे लोग बोलते हैं। इस तरह कृष्ण के बारे में पूर्ण विश्वास जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं है, ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान के अंतरंग लीलाओं को समझ सकते हैं। एक दिन शाम के समय एक प्रभुपाद जी जा रहे थे, ऐसे प्रभुपाद के एक शिष्य ने दिखाया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर सूर्य का अस्तमन हो रहा है, देखिए समुद्र के पास। तो प्रभुपाद जी मुड़कर देखा प्रभुपाद ने, और तुरंत प्रभुपाद ने पूछा उस शिष्य को कि तुम इस सूर्य अस्तमन की जो बात है उसको सृष्टि जिस व्यक्ति ने किया है, जो आर्टिस्ट, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते तुम, ऐसे पूछा प्रभुपाद जी ने। हालांकि ये सुंदर है लेकिन एक सुंदर फूल है तो पूछना चाहिए कि ये सुंदर फूल का सृष्टि किसने किया है, उसको तुमने उनको देखना चाहिए। तो भौतिक दुनिया में लगभग ज़्यादातर लोग नास्तिक होते हैं, उनको भगवान के बारे में सोचते भी नहीं, कृष्ण कौन है मालूम भी नहीं, कृष्ण को एक साधारण पुरुष के रूप में सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को कृष्ण के अंतरंग लीलाओं के बारे में कैसे पता चल सकता है, इस तरह प्रभुपाद जी पूछते हैं। इसलिए पहले हमें हमारे हृदय में पूर्ण विश्वास बैठना चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है। भगवान खुद बताते हैं, यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववेद भजति माम सर्वभावेन भारत अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो भगवान बताते हैं इन श्लोकों में कि जो लोग समझते हैं कि मैं सारे दुनिया के सब शक्तियों का मैं स्रोत्र हूँ, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि हम कृष्ण को मानते हैं, वो क्या करते हैं, इति मत्वा, ये मानने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, भजन्ते मां, मेरा नाम लेते हैं, मेरी पूजा करते हैं, बताते हैं बुधा, वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भाव समन्विता, वो बोलते हैं कि वो हृदय के साथ मेरे भक्ति भावना में लगते हैं, ऐसे बताते हैं। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कृष्ण कैसे भक्त वत्सल हैं, और कृष्ण कैसे मधुर हैं, और कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान कैसे होता है, ये सब हम नहीं समझेंगे, और कृष्ण की स्थिति क्या है वो नहीं समझेंगे। भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग बोलेंगे कभी कि मुझे कृष्ण मालूम है, लेकिन वो सेवा में नहीं लगेंगे कृष्ण के। भारत में कितने लोग बोलते हैं, व्हाट द डेट इज नेम, अच्छा कुंज बोलने पढ़ा क्या, श्री राधा कुंज बिहारी की, हरे कृष्ण। इसी तरह दूसरे शब्द में बताते हैं यो माम ये असम मूडो, मुझे किसी भी तरह का बेबिल्डरमेंट, व्हाट इज बेबिल्डरमेंट, मूढ़ता, सम्मूढ़ता बोलते हैं बेबिल्डरमेंट, भ्रम, किसी भी तरह के भ्रम के बिना जो व्यक्ति जानता है यो माम एव असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्ववेद, वो सब कुछ जानता हो, भगवान बताते हैं जिसको कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास है, सर्व भावेन भारत, सब भाव अपने हृदय के भाव के साथ, हृदय के साथ भगवान की भक्ति में वो लगता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमती राधारानी इज द एम्ब्लम ऑफ महाभागवत, ऐसे उनके एक प्रवचन में, राधाष्टमी के प्रवचन में प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमती राधारानी इज द एम्ब्लम ऑफ महाभागवत। वो बताते हैं कि हम महाभागवत भक्तों के बारे में बात करते हैं, आप भागवत के 11वें स्कंदा पढ़िए, उधर आपको पता चलेगा कि महाभागवत भक्त का क्या क्या लक्षण है, उत्तम भागवत का वो कैसे भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से वह निर्भर रहता है, सदा 24 घंटा भगवान का स्मरण करता है, सब जीवों के हृदय में वो देखता है कि जीवात्मा के साथ साथ भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो भगवान से प्रेम करता है, इसलिए सब जीवों से भी वो प्रेम करता है, वो किसी भी भौतिक दुनिया के चीज़ों से आसक्त नहीं होता है, और भगवान की सेवा में बहुत प्रेम के साथ आनंद के साथ लगता है, हमेशा कृष्ण के नाम और कृष्ण के गुणगान करता है, इस तरह अनेक लक्षण बताए गए हैं उधर। तो हमें भगवान के भक्तों को देखकर पहले समझना चाहिए कि महाभागवत का क्या क्या लक्षण है, वो हमें समझना चाहिए। इस तरह अगर हम देखकर समझेंगे, अभी के आचार्यों को हम देखते हैं, उसके बाद उनके गुरु ऐसे ऊपर हम जाएंगे, तभी पता चलेगा का हमें पता चलेगा कि राधा रानी किस तरह की महाभागवत भक्त है, तभी हम समझेंगे। तो तभी हमें पता चलेगा कि भक्ति का मतलब क्या है। तो भक्ति संजायते भक्ति, ऐसे बताया गया, भक्ति एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे जीव के हृदय में वो पहुँचता है, ऐसे बताया गया है। तो हम लोगों के हृदय में जो भी थोड़ा बहुत भक्ति है, इसको हमें वैष्णव से प्राप्त किया है भक्ति भावना को कृष्ण के ऊपर, लेकिन ये सब भक्ति भावना का भंडार है श्रीमती राधा रानी और वृंदावन की गोपियां। तो प्रभा जी बताते हैं एक बार जब प्रभा जी भारत में आए थे, अपने पाश्चात्य देश के शिष्यों को लाकर आए थे, तो प्रभा जी सुबह भागवतम क्लास दे रहे थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में भक्त लोग आए थे भागवत में। तो प्रभुपाद ने जोर से डांटा भक्तों को, किधर गए सब भक्त लोग। तो किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी वृंदावन में पहली बार आए हैं, इसलिए वो सब शॉपिंग करने के लिए गए हैं। और किसी भक्त ने बोला प्रभुपाद जी वो राधा कुंड श्याम कुंड देखने के लिए गए हैं। किसी ने बोला प्रभुपाद जी वो गोवर्धन देखने के लिए गए हैं। और किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी वो और ज़्यादा नाम जपने के लिए गए हैं। और कुछ लोगों ने बोला कि प्रभुपाद जी वो पहली बार अभी आपके मुख से कितने बार सुना है वृंदावन के बारे में, अभी भी आए हैं पहली बार, इसलिए थोड़ा साइट सीइंग के लिए गए हैं, देखने के लिए ऐसे वृंदावन कैसा है। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला कि वृंदावन को हम तब देख सकते हैं जब हम वैष्णव के पद कमलों के पास बैठकर हम भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्रभुपाद ने बोला इधर बैठा है गुरु, और सब चीजें भाग गए घूमने के लिए। इस तरह प्रभुपाद ने डांटा उनको। और शाम को एक प्रवचन दिया प्रभुपाद जी ने, उस समय इतना भीड़ हो गया सब भक्तों का, कोई भी भक्त कहीं भी नहीं गए, सब लोग आ गए शाम को। पता चल गया उनको प्रभुपाद जी क्रोधित थे सुबह, सबका अटेंडेंस हो गया उधर। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे शाम के प्रवचन में, देखो आप लोग वृंदावन में घूमने के लिए गए हो, लेकिन राधा और कृष्ण को वृंदावन के कुंजों में ढूंढो मत। जितना भी तुम वृंदावन की सेवा कुंज में जाओ, दूसरे कुंज में जाओ, आपको कुंज बैरी नहीं प्राप्त होंगे जब तक आपके हृदय वृंदावन नहीं बनता। क्योंकि ये गोपियों की जो भावना है कृष्ण की ओर, ये भावना जो है एक भक्त के नेकता से, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, भगवान के नामों का उच्चारण करने से, भागवत ग्रंथ पढ़ने से, और शुद्ध चित्त के साथ भक्तों के साथ आदान प्रदान करने से, किसी वैष्णव पर आदर ना करने से, इस तरह धीरे धीरे वो भक्ति भावना बढ़ेगा। जब वृंदावन, जैसे राधा रानी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मोर मन वृंदावन बोलते हैं, मेरे मन ही वृंदावन है ऐसे बताते हैं, जब हमारे हृदय में मन वृंदावन बनेगा, तभी जब राधा कृष्ण की प्रेम जागृत होगा, तभी हम वृंदावन में जब जाएंगे, तभी प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती। तो प्रेम के अंजन जब आंखों में लग जाता है, तभी हम वृंदावन में भगवान की लीलाओं को हम देख सकते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे, देखो वृंदावन में कुछ लोग यमुना में नहाकर सुबह सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठकर दिन भर वो जप करते हैं, गीले कपड़ों के साथ, गीले बालों के साथ दिन भर राधा कृष्ण का नाम जपते हैं, और वो लोग मौन व्रत करते हैं, किसी से बात भी नहीं करते, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना कठोर परिश्रम करते हैं, और उनके शरीर को देखो पूरा हड्डी हड्डी दिखता है, वो खाते हैं बहुत कम, सोते हैं बहुत कम, और सदा भगवान का स्मरण में डूबे रहते हैं। और उन्होंने बोला गोस्वामी के बारे में, गोस्वामी ने कैसे जिया है, तो प्रभुपाद ने बोला कि जैसे हम गोस्वामी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमने राधा कृष्ण को देख लिया है। जैसे हम गोस्वामी के जीवन में देखते हैं, गोस्वामी लोग कौन हैं, अनेक गोस्वामियाँ वो मंजरी हैं, जैसे राधा कृष्ण लीला में जो मंजरी होते हैं, मंजरियों की उम्र होता है 6-7 साल होता है उनका, गोपियों की उम्र होता है 11-12 साल होता है इसे, तो ये मंजरी जैसे रति मंजरी, विलास मंजरी, कमल मंजरी, ऐसे मंजरियाँ जो भगवतधाम में रहते हैं, वो लोग इधर भौतिक दुनिया में आकर वो गोस्वामी बनते हैं। लेकिन ऐसे गोस्वामी भी वो ऐसे बताया गया है कि वो वृंदावन में हमेशा भगवान का नाम लेते हुए वो रोते थे और बोलते थे, जैसे हम षड गोस्वामी अष्टकम में गाते हैं, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः। प्रभु ने कोट किया और बोला कि गोस्वामी लोग हालांकि वो आंखों से देखते हैं राधा कृष्ण को, जैसे हम लीला पढ़ते हैं, एक बार एक दिन सनातन गोस्वामी का बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, तो एक छोटी लड़की आकर रूप गोस्वामी के पास आई, और एक सुंदर एक वाटिका वाटी में एक वाटी में उन्होंने एक स्वीट ड्रेस दिया उनको, तो रूप गोस्वामी ले लिया और देखा कि वो जो बालिका आई थी वो तुरंत तो गायब हो गई, तो जाकर उन्होंने दिया सनातन गोस्वामी को कि इधर आपका आज जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है, इसलिए ये स्वीट राइस लाया हूँ मैं। उन्होंने पूछा किधर से लाया तुमने स्वीट राइस, अचानक इतना अच्छा स्वीट राइस बनाकर, तो उन्होंने बोला कि एक बालिका आकर दिया, ऐसे बोला उन्होंने। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा खाने लगे, मुँह में डाला उन्होंने, इतना वो मधुर था, इतना मिठास था उसमें, इतना दिव्य था वो, तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगा, वो बोलने लगे कि इसको तुम्हारे पास जो आकर दिया मालूम है कौन, श्रीमती राधा रानी है, ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला कि तुमने बड़ा गलती कर दिया, ऐसे हम कैसे राधा रानी से सेवा ले सकते हैं, राधा रानी किसकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हम कैसे उसका सेवा ले सकते हैं। इस तरह सनातन गोस्वामी ने डांटा उनको, लेकिन हालांकि उन्होंने डांटा फिर भी स्वीट राइस इतना मीठा था, दोनों डांटते खाने लगे उसको, ऐसे हैं। तो ऐसे गोस्वामी के जीवन में राधा कृष्ण आकर लीला करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठकर जप करते हैं, वृंदावन में तभी एक बाघ आता है पानी पीने के लिए तालाब में है, तभी कृष्ण भगवान खुद आकर उधर एक लाठी लेकर खड़े रहते हैं बाजू में हैं, ताकि सनातन को रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ समस्या ना हो। हाँ, तो दूर से देखा सनातन गोस्वामी ने, हाँ देखा कि इस तरह भगवान खुद आकर रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा कर रहे हैं। राधा रानी एक दुब जब खड़ी रहती है, वो अपने साड़ी से एक छतरी जैसे उनके ऊपर पकड़ी होती है, इस तरह सेवा करती है। तो उन्होंने रघुनाथ दास को बोला, उन्होंने रघुनाथ दास तुम राधा कृष्ण से सेवा मत लो, आपको सेवा करना चाहिए उनको, हाँ आप अच्छा कि आप अपने आप को एक कुटीर बना लो और कुटीर में बैठकर आप जप करिए, ऐसे बोला। तो राधा कृष्ण को अपने आंखों के सामने वो देखते थे, गोपियों को राधा कृष्ण को वो देखते थे गोस्वामियाँ। फिर भी गोस्वामी की भावना क्या था, हे श्रीमती राधा रानी आप किधर हो, हे कृष्ण आप किधर हो, क्या आप गोवर्धन के पर्वत में हो, क्या आप राधा कुंड के तट में हो, क्या आप कदंबकानन जंगल में हो, आप किधर हो, इस तरह की भावना से हमेशा अपने हृदय में राधा कृष्ण का विरह का वो अनुभव करते थे ये गोस्वामियाँ। तो प्रभा जी बोलते हैं कि ये सही भावना है। तो प्रभा जी बताते हैं कि हमें गोस्वामियों के पदचिन्हों में चलते हुए सीखना चाहिए, हमें हमारे हृदय में और वृंदावन में कैसे हमें भगवान को ढूंढना चाहिए, ऐसे बताते हैं। ये भागवत में ऐसे वर्णन आता है, कैसे गोपियाँ जब भगवान जंगल में जाते हैं अपने बाल बालकों के साथ गाय चराते हुए सुबह सुबह निकलते हैं भगवान, तभी सब गोपियाँ अपने मन ही मन ध्यान करते हैं कृष्ण के, और कृष्ण और बलराम और उनके गोप बालक जब जाते हैं जंगल में अपने आँख बंद करके वो ध्यान करते हैं। इसको प्रभु जी बताते हैं लीला समाधि, ऐसे बताते हैं लीला समाधि। वो लीला समाधि में क्या वो सोचती हैं, उनके मन में ऐसे चित्र दिखता है उनको, भगवान जंगल में क्या क्या कर रहे हैं। ये गोपी बोल रही है दूसरे गोपी को, हे गोपी मालूम है भगवान क्या कर रहे हैं, एक पेड़ के नीचे ये जो घास हरा भरा घास रहता है उसमें भगवान अपने क्या हाथ है, बाएं हाथ है दाएं हाथ है, बाएं हाथ, बाएं हाथ में भगवान ऐसे लेटे हैं, ऐसे वो घास के ऊपर लेटे हैं भगवान, और एक हाथ से वो मुरली बजा रहे हैं और अपने आँखों को बंद करते हुए मुरली बजा रहे हैं, और ऐसे मुरली बजाते समय उनके जो इसको क्या बोलते हैं भौएं हैं उसको भगवान हिलाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उसको हिलाते हैं। और जब ऐसे मधुर मुरली बजाते हैं वो इतना मधुर है, वो बोलती है गोपी बोलती है कि जो आसमान के मार्ग में आकाश मार्ग में जाने वाले जो देवी देवता हैं वो अनेक तरह के बाज बजाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान के मुरली के बाज के सामने उनके बाज जो बजाने वाले गंधर्व वगैरह होते हैं वो सोचते हैं कि उनको शर्म आता है उनको, ये कितना मधुर है, वो अपने बाज को बंद करके भगवान की मुरली को ध्यान से सुनते हैं, वो सुनकर बेहोश हो जाते हैं अपने अपने हवाई जहाज में ऊपरी ऊपर। ऐसे भगवान जब मुरली बजाते हैं, एक दूसरे को भी बोलती है कि देखो गायें जब घास फूस खा रहे हैं जंगल में, ऐसे जब भगवान मुरली बजाना शुरू होता है भगवान का तो अपने मुंह में तो घास को रखा है उन्होंने लेकिन खाने के लिए भूल गए वो, ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं अपने घास को रखते हैं मुँह में ऐसे, ऐसे ही गोपी बताती है। और तीसरी गोपी बताती है और एक गोपी को, हे देखो यमुना हमेशा बहुत तेजी से चलती है, यमुना की प्रवाह आप देखेंगे कितना तेज से चलती है, लेकिन वो क्या करती है यमुना जब भगवान बजाते हैं मुरली तब यमुना का प्रवाह बहुत धीमी से चलता है और बंद हो जाता है, तो हिलने वाले चीज़ रुक जाते हैं और रुकने वाले चीज़ हिलते हैं जब भगवान मुरली बजाते हैं। जैसे पत्थर जो है वो तो अचल बोला गया है पत्थर के बारे में है ना, लेकिन पत्थर पिघलता है भगवान की मुरली से, लेकिन यमुना का प्रवाह जो है वो बंद हो जाता है। और यमुना ये हवा को बोलते हैं कि मेरे से पानी लेकर तुम भगवान को, ये जो धूप कड़ी है इसलिए भगवान के ऊपर ये पानी का जो बूंद है उसको आप भगवान के ऊपर डालो, इससे क्या होगा भगवान बहुत खुश हो जाएंगे इससे, इसे यमुना याचना करती है हवा से ऐसे। तो ऐसे ये गोपी यमुना के बारे में गुणगान करते हैं ऐसे। और एक गोपी बोलते हैं देखो विष्णु जो है हमेशा उनके आमने सामने शिव जी इंद्र चंद्र वरुण वायु सब लोग उनके आमने सामने घेर कर रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जंगल में जो भगवान जाते हैं उनके गोप बालक हमेशा उनको घेर कर रहते हैं। हाँ वो हंसते हैं मजाक उड़ाते हैं खेलते हैं कूदते हैं गीत गाते हैं नाचते हैं। देखो भगवान जैसे चंद्रमा के आसपास जब तारे होते हैं इस तरह उनके सब गोप बालक सुंदर तरीके से भगवान को घेर कर उनके साथ लीलाएं करते हैं। कितना सुंदर है देखो ऐसे ये गोपी बताती है। और ये गोपी बताती है देखो यमुना के पानी में अनेक तरह के जलचर होते हैं और बतख होते हैं हंस पक्षी होते हैं और ये सब जो है ये तो हमेशा पानी में खेलते रहते हैं अपने पंखों को हिलाते हुए। लेकिन भगवान जब मुरली बजाते हैं ये सब अपने पंखे हिलाकर आवाज करना जो होता है उसको बंद कर देते हैं और क्या करते हैं अपने आँखों को बंद करके ऐसे ध्यान से सुनते हैं मानो कोई ऋषि मुनि ध्यान करते हो इस तरह वो ध्यान से सुनते हैं ऐसे बताते हैं। और एक गोपी बताती है देखो आसमान में जो बादल है वो कृष्ण का बहुत निकट मित्र है। मालूम है क्यों कृष्ण का मित्र है? क्योंकि दोनों का रंग एक ही है। आसमान में जो बादल है उसका और कृष्ण का रंग एक ही है। और दूसरा है ये आसमान में जो बादल है वो क्या करता है जो लोग जब समर सीजन में ये किस ऋतु में होते समर सीजन हाँ गर्मी के समय उनका शरीर में इतना गर्मी होता है लेकिन जब बादल बरसता है लोगों को अच्छा लगता है ना। कभी कभी बच्चे लोग बादल जब बरसात आता है उसमें खेलते भी हैं है ना समर सीजन में उसमें बहुत आनंद मिलता है उनको। इस तरह लोग जो बरसात आने से बहुत खुश हो जाते हैं गर्मी के मौसम में। इस तरह बताती है गोपी कि इस दुनिया के सब जीवराशियाँ तड़प रहे हैं भवसागर में ये संसार दावनल में हैं लेकिन जब भगवान कृष्ण के आश्रय में आते हैं उनको जैसे एक धूप में बहुत दूर चलकर आए हुए आदमी एक एयर कंडीशन रूम के अंदर आ जाए उसको कैसे लगेगा ऐसे सब जीवों को लगता है बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह एक गोपी गुणगान करती है और बोलते हैं कि देखो ये बादल जो है ये भगवान जिधर खड़े हैं उनके सर के ऊपर आकर एक छतरी के समान खड़ा रहता है बादल और ऊपर से थोड़ा पानी फेंकता है भगवान के ऊपर ताकि भगवान खुश हो जाए। इस तरह गोपियाँ भगवान के जंगल में जाते समय भगवान कैसे बाज बजाते हैं मुरली बजाते हैं इसके ऊपर ध्यान करते हुए पूरे दिन ध्यान प्रभुपद बताते हैं। इसका नाम है लीला समाधि। ये लीला समाधि से क्या होता है एक व्यक्ति का चित्त पूर्ण तरीके से कृष्णमय हो जाता है। कृष्णमय होने का मतलब है कृष्ण के बारे में चिंतन अपने बारे में कुछ भी चिंता नहीं है। ऐसे हम इस दुनिया में देखते हैं कि साधारण तरीके से देखा जाए तो किसी के भी जीवन में लोग पहले अपने पेट के बारे में सोचते हैं उसके बाद अपने कपड़ों के बारे में सोचते हैं उसके बाद अपने रहन सहन की व्यवस्था के बारे में सोचते हैं उसके बाद अपने परिवार और अपने रिश्तेदार और समाज के दूसरे लोग इनके बारे में सोचते हैं अपने धंधा इसके बारे में और यह सब होने के बाद अपने धंधा को बढ़ाने के लिए सोचते हैं और इस तरह भौतिक जीवन में स्थित होने के बाद सोचते हैं कभी कभी हम मंदिर भी जाएंगे ऐसे लोग सोचते हैं। तो ब्रह्मा जी ने 5 तरह के आवरण डाला जीवों के ऊपर। उसमें मोह का मतलब है खुद के शरीर के बारे में सोचना। महामोह का मतलब है शरीर से संबंधित चीज़ों के बारे में सोचना। इस तरह जीव इस दुनिया में डूबे रहते हैं इसमें। लेकिन कृष्ण के बारे में और कृष्ण की क्या इच्छा है कृष्ण का लीला क्या है कृष्ण को हम कैसे खुश करें इसके बारे में सोचने वाले बहुत कम है। लेकिन गोपियों का मतलब है उनका चित्त पूर्ण तरीके से कृष्णमय हो चुका है। इसलिए बताते हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता ऐसे बताया गया है। वो कृष्ण के सिवाय दूसरे चिंता उनके मन में आता ही नहीं है ऐसा है। तो अगर आपको ये समझना है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी माता जी को पूछिए जब उनका मासूम बच्चा होता है 4 महीने का 5 महीने का उनका चित्त भी ऐसे ही होता है। बच्चे के ऊपर पूर्ण तरीके से डूब जाता है अपने बारे में सोचती नहीं है वो। और बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो क्या करती है, उसको अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहन कर देखती है हा? और अलग अलग फैशन में उसको कभी कभी रबर बैंड ऐसे लगाती है हा? कभी कभी ऐसे जड़ा जड़ा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जटा जटा है ना, क्या बोलते हैं उसको, मालूम है आपको, हाँ छोटी है, हाँ ठीक है, छोटी लगा कर देखती है, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, ऐसे है। और अलग अलग कभी कभी एक बिंदी लगाती है, इधर एक बिंदी लगाती है, इधर एक बिंदी लगाती है, ऐसे वो देखती है ना। और अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, अलग अलग शूज़ पहनाती है उसको, अलग अलग वेशभूषा पहना कर देखना चाहती है, पूरे उसका मन उसमें ध्यान में लग जाता है। इस तरह भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के श्री विग्रह को सजाते हैं ऐसे हैं, रंग बिरंगे कपड़ों से पहनकर, अलग अलग स्टाइल में पहनाकर, अलग अलग टर्बन, अलग अलग मुकुट पहनाकर भगवान को सजाते हैं, राधा कृष्ण को सजाकर उसमें वो आनंद लेते हैं। तो भौतिक दुनिया में हम इस तरह के भौतिक रिश्ताओं में कभी कभी हम डूबे रहते हैं, वो भौतिक समाधि है। और भौतिक समाधि में, समाधि से हमें बार बार हम जन्म लेते हैं, लेकिन जब हम भगवान के समाधि में हैं, भगवान के स्मरण में, भगवान की लीला समाधि में डूबे रहते हैं, हाँ, इसलिए अगर किसी पुरुष स्त्री, किसी पति पत्नी बच्चे, उनका हृदय में भगवान की ओर एक भक्ति भावना उदय हो जाए तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे आप सब माला करते हैं, मंदिर में आते हैं, घर में भी भक्ति करते हैं, तो इस तरह की भक्ति भावना जागृत होना बहुत जन्मों के बाद होता है। और वो भक्ति भावना जागृत होने के बावजूद भी बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई कृष्ण को कोई समझते हैं, कृष्ण के संबंध में, और कृष्ण को समझने के बावजूद भी बहुत जन्मों के बाद किसी को ये राधा रानी, राधा जी और गोपियाँ, इनके शुद्ध हृदय जो होता है, बोली बाली राधे राधे, ऐसे लिखा होगा आप देखेंगे वृंदावन के सब पेड़ों में हैं, उनके हृदय की भक्ति भावना को समझने के लिए उच्च कोटि की शरणागति की ज़रूरत है। तो प्रभु जी बताते हैं इस तरह अगर हम कृष्ण को समझना चाहते हैं या राधा कृष्ण लीला को समझना चाहते हैं तो बताते हैं कृष्ण भी खुद समझ नहीं सकते हैं श्रीमती राधा रानी के हृदय में कैसे इतना भक्ति का प्रवाह है, भक्ति का समुद्र है, कृष्ण भी खुद समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण बोलते हैं भगवद्गीता में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, भगवान बताते हैं मुझे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब मालूम है मुझे, भगवान बताते हैं, लेकिन ऐसे बोलने वाले भगवान को मालूम नहीं है राधा रानी की शुद्ध भक्ति, वो कैसे इतने भक्ति से वो सेवा करते हैं उनको मालूम नहीं है, ऐसे भगवान खुद मानते हैं। इसके बारे में मैंने पहले एक प्रवचन में हमने बोला था, एक जन्माष्टमी के प्रवचन में, तो तुकाराम एक सुंदर उदाहरण देते हैं, तुकाराम जी वो बताते हैं कि कमल जो है उसको मालूम नहीं है कि उसमें कितना शहद है, कितना मधुरता है, कितना सुंदरता है, उसको मालूम नहीं है कमल को, क्योंकि खुद को वो कैसे देख पाएगा, वो मालूम नहीं है। लेकिन जो भ्रमर होता है वो देख सकता है, भ्रमर देख सकता है कि कमल कितना सुंदर है, उसमें शहद कितना मधुर है। इस तरह भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान की मधुरता मालूम है, क्योंकि भगवान की सुंदरता, भगवान की मधुरता, इसको भगवान के भक्त लोग उसमें डूबकर आनंद लूटते हैं। लेकिन भगवान सोचते हैं, कह रहे हैं मुझे ये भक्त लोग इतने खुश हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो सेवा लेते रहता हूँ और ये लोग सेवा देकर इतना खुशी में हैं और मैं सेवा लेने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। इस तरह सोचकर भगवान सोचते हैं कि मैं मेरे भक्तों के हृदय में क्या भावना है मैं समझने के लिए मैं एक अवतार लूँगा। क्या अवतार है? चैतन्य महाप्रभु के अवतार है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनको राधा रानी के भूमिका में खुद को डालकर अपने, तो कृष्ण का ही स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण श्याम सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर है, दोनों में सिर्फ वर्ण का फर्क है बस, लेकिन व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, कृष्ण ही है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कृष्ण है लेकिन उनका भावना क्या है, अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं राधा रानी हूँ ऐसे, ये कैसे हो सकता है। तो उनका उनका शरीर का कांति भी राधा रानी का शरीर का कांति है सोने का। तो ऐसे कृष्ण कविराज गोस्वामी लिखते हैं ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु हाँ, जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, जब रात को सोते थे हाँ, सोते समय उनको वृंदावन की लीलाओं का स्वप्न आता था उनको हाँ। जैसे एक दिन देखा चैतन्य महाप्रभु ने उनके स्वप्न में हाँ, उन्होंने देखा कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े थे हाँ, और उनके आमने सामने हाँ, सब गाय थे हाँ, और उनके गोप बालक सब थे हाँ, सामने, और दूर में से अनेक गोपियाँ थी जो देख रहे थे भगवान को। ऐसे इस तरह का एक सुंदर दृष्टि उनको स्वप्न में आया ऐसे। तो अचानक गोविंद ने देखा कि सुबह अभी बहुत लेट हो गया, महाप्रभु ने उठा नहीं आज हाँ, इतना लेट हो गया। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई मंगल आरती में उठे नहीं है कोई भक्त, हम उठाते हैं उनको हाँ। इस तरह गोविंद ने उनको उठाया महाप्रभु को, महाप्रभु जी अभी बहुत लेट हो गया। महाप्रभु उठ गए और उन डांटने लगे गोविंद को, हे गोविंद क्यों उठाया तुमने हाँ? कितना सुंदर दर्शन दृष्टि मुझे प्राप्त हुआ वृंदावन की हाँ? किधर है कृष्ण, किधर है गोवर्धन हाँ? किधर है गोपाल, किधर है गाय, किधर है गोपियाँ हाँ? इस तरह बोलकर वो रोने लगे वो हाँ? तुमने मेरे सुंदर दर्शन मुझे जो प्राप्त हुआ हाँ? वो अभी प्रस्थान हो गया हाँ? इस तरह बता रहे थे हाँ? हम लोग जो हैं इसका नकल हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भक्त सो गया सुबह 6 बजे तक हाँ? उसको उठाओ हाँ? प्रभु जी मुझे उठाओ नहीं है, मैं वृंदावन के गोपी भावना में हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि जब हमारे वैदी भक्ति है रागानुग भक्ति है, वैदी भक्ति में एक व्यक्ति क्या सोचना चाहिए, कृष्ण मेरे मालिक हैं मैं उनका दास हूँ, कृष्ण मेरे मास्टर मैं उनका दास हूँ, नहीं तो मैं उनका दास हूँ, उनका दास हूँ, ऐसे सोचना चाहिए। लेकिन रागानुग भक्ति में क्या भक्त सोचता है, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ। जैसे कृष्ण का नाम है श्याम है, और राधा रानी का नाम है श्यामा, इसका मतलब क्या है, कृष्ण इज श्याम, राधा रानी श्यामा मीन्स वन हु बिलोंग्स टू कृष्ण, दैट्स द मीनिंग ऑफ श्यामा। सो ए डिवोटी थिंग्स आई बिलोंग टू कृष्ण एंड कृष्ण बिलोंग्स टू मी, इन विच स्टेज, इन रागानुगा स्टेज, इट्स वेरी एडवांस स्टेज। तो उस अवस्था में विधि विधान कुछ अप्लाई नहीं होता, तो चैतन्य महाप्रभु अगर मंगल आरती में नहीं आए तो उनको अटेंडेंस नहीं लिया जाता है क्योंकि वो कृष्ण भावना में डूबे हैं ऐसे हाँ? राधा रानी की भावना में हाँ? तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे जगन्नाथपुरी में, रात को इतने रोते थे कृष्ण के स्मरण में हाँ? तो एक और रामानंद राय हाँ? वो भागवत से अनेक श्लोक सुनाते थे हाँ? हाँ? जैसे स्वरूप दामोदर वो अनेक गीत गाते थे ऐसे हाँ? तो ये दोनों दोनों साइड में रहकर उनको महाप्रभु को आश्वासन देते थे ऐसे हैं, आश्वासन देते थे ऐसे हम। तो महाप्रभु कहाँ से ऐसे आंसू बहता था कृष्ण के विरह में ऐसे। तो कभी कभी कमरे के अंदर जब सोते थे बाहर से ताला लगा देते भक्त लोग ताकि महाप्रभु रात को उठकर बाहर ना आ जाए, लेकिन महाप्रभु तो खुद भगवान है, रात को उठ जाते थे तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। जैसे कृष्ण का जन्म जब होता है जेल का ना अपने आप खुल जाता है ना, ऐसे खुल जाता था वो। और महाप्रभु बाहर जाते थे कृष्ण के नाम पुकारते हुए हैं, वो जगन्नाथपुरी के गलियों में कभी कभी सीमा द्वार तक जाते थे हाँ, उधर जाकर गिर जाते थे उधर। भक्त लोग बाद में एक हरिकेन हरिकेन का जो दिया लेकर ढूंढ कर महाप्रभु को देखते थे। कभी कभी महाप्रभु समुद्र में जाकर गिर जाते थे ऐसे। तो ये प्रेमावेश है, प्रेमोन्माद, प्रेमावेश है, इसको महाप्रभु ने प्रकट किया ऐसे। तो ऐसे एक दिन की लीला हम सुनते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अचानक देखा एक चाटक का पर्वत को देखा, ये चाटक पर्वत जो है उसको देखकर उनको, ये तो रेत जो होता है उसका एक पर्वत है, रेत का पर्वत, सैंड ड्यून बोलते हैं उसको, सैंड ड्यून। दूर से उन्होंने देखा कि उनको लगा कि ये गोवर्धन है, तुरंत उन्होंने भागवत से वो श्लोक कोट किया जो गोपियां गाती हैं, हंताय मद्रिय बलाम हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। वो गाते हैं हे हरिदास वर्य, हरिदास वर्य मतलब हरि के दासों में से श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, वो गोवर्धन। हे गोवर्धन, आपके शरीर में भगवान कृष्ण और बलराम की पदकमल हमेशा आपको छूते हैं, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, और इसके कारण आप पुलकांकित होकर प्रेमोन्माद होकर आपके शरीर के जो बाल हैं गोवर्धन के शरीर में, क्या बाल हैं, पेड़ पौधे, वो सब खड़े हो जाते हैं ऐसे जब भगवान अपने पाँव को डालते हैं उसके ऊपर, है इतना प्रेम उन्माद में आ गए हो आप। ऐसे गाते हुए महाप्रभु भागने लगे हैं वो इसके पीछे, ऐसे पर्वत के पीछे। तो जब गोविंदा और दूसरे लोगों ने देखा, वो लोग डर गए, क्योंकि सैंड ड्यून जो होता है कभी कभी अगर आप उसके पास जाते हैं तो अंदर किसी व्यक्ति को वो निगल लेता हो ऐसे, हाँ क्विक सैंड बोलते हैं ना, सॉफ्ट सैंड होता है, कभी कभी वो डूब जाते हैं लोग उसमें नीचे। इसलिए महाप्रभु को पकड़ने के लिए लोग पीछे भागे, इतनी तेजी से भाग रहे थे महाप्रभु, हाँ तो पास में जब गए महाप्रभु बेहोश होकर गिर गए भूमि में, उनके उनके शरीर के रोम रोम से ऐसे पसीना निकल रहा था ऐसे, और पूरा उनके शरीर में जो ये उनके शरीर के जो बाल है वो खड़े हो गए प्रेम में, हैं अभी आँखों से पानी ऐसे भरा था मानो बारिश भरा हो ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य ऐसे बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर हम जान सकते हैं कि भगवान के कृष्ण के भक्तों के हृदय में किस तरह का प्रेम का उन्माद है। तो ये राधा कृष्ण लीला, नहीं तो लक्ष्मी नारायण सीताराम इनकी लीला भी समझना कठिन है, राधा कृष्ण लीला तो और भी बहुत गहरा विषय है समझने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शिक्षणों को पढ़ने से और उनकी लीलाओं को सुनने से और हमें भगवान नाम लेने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह हम करते करते जाएंगे हम ये सारे भगवान की जो धाम है वो हमारे हृदय में उसका प्रकटीकरण होगा। आई स्पीक फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड विल बी रिवील्ड इन अवर हार्ट इफ वी फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड ऑल द आचार्यस इन द लाइन एंड वी चैंट द होली नेम एंड वी स्टडी प्रभुपाद बुक्स एंड वी सिंपली अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस इन अवर लाइफ बिकॉज द लव ऑफ श्रीमती राधारानी फॉर कृष्णा एंड द लव ऑफ गोपीज फॉर कृष्णा एंड द भक्ति भावना एंड द ट्रांसेंडेंटल मैडनेस दैट दे एक्सिबिट, इट इज नॉट ईजिली डिस्क्राइबल नॉर इज इट ईजिली अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम अ इंटलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मंडेन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ यू सिंपली प्रैक्टिस भक्ति इन अवर ओन हार्ट्स डीप विद इन द रिसोर्सेज ऑफ अवर हार्ट्स वी कैन अंडरस्टैंड when we are singing the Mahamantra, one can get the vision of Vrindavan, of how Krishna and his friends, Krishna and the gopis, they are dealing with Krishna, they are delighting with Krishna, and how they are reciprocating with Krishna. These truths have to be revealed in the heart. That is why Prakashante Mahatmanah. Yasya Deve Parabhaktir, Yata Deve Tata Guru, Tasya Ite Katita Hyartha, Prakashante Mahatmanah. So Prabhupada Ji bolte hain, unke Krishna book mein, और चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में कि हरेक गौड़ीय वैष्णव जो होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनको इस तरह कृष्ण की ओर आकर्षण और राधा कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा का आकर्षण ये जागृत करना हरेक गौड़ीय वैष्णव के लिए आवश्यक है। इस तरह प्रभु जी बताते हैं तो एक ऐसे हम जागृत कर सकते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव सुरत्यज, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी, जिह्वा के द्वारा सेवा है सिर्फ प्रसाद को प्राप्त करना है लेना, और जिह्वा का और एक सेवा है भगवान के नामों का उच्चारण करना है, और इन लीलाओं को कैसे हमें सुनना चाहिए, आदरपूर्वक सुनना, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से जो समझने के लिए प्रयत्न करेगा ऐसे व्यक्ति जरूर गलत कर बैठेगा, क्योंकि जब वो जैसे ये जो ये रायवत पर्वत में जो एक बंदर था उसका नाम क्या था, द्विविधा नाम का, उसने जब कृष्ण गोपियों को देखा उसने सोचा कि ये क्या कृष्ण भोग रहे हैं गोपियों से, मैं भोगूंगा, इस तरह सोच रहा था। इस तरह जो बद्ध जीवात्मा होते हैं वो कृष्ण और गोपियों के रास नृत्य को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये क्या भगवान नाच रहे हैं, हम भी नाचेंगे भगवान जैसे, लेकिन भगवान गोपियों के साथ जब नाच रहे थे भगवान का उम्र 8 उम्र था, लेकिन 7वीं उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया उसके बारे में कोई बोलते नहीं है, एक टेबल को भी अपने छोटे उंगली से कोई उठा नहीं सकता, लेकिन भगवान के रास नृत्य को लोग नकल करना चाहते हैं इस भौतिक दुनिया में। इसलिए हमें प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों के द्वारा सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमती राधारानी इज द एम्बलम ऑफ महाभागवत। सो वन ऑल्सो शुड सी दैट द स्पिरिचुअल मास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीमती राधारानी ऑल्सो। ही इज ऑल्सो एम्बलम ऑफ राधारानी'स डिवोशन टू कृष्णा विच ही इज रिप्रेजेंटिंग टू अस इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल वी डोंट हैव द विजन ऑफ श्रीमती राधारानी हाउ शी इज डूइंग डिवोशन टू कृष्णा, वी डोंट हैव द विजन, बट हाउ वी कैन गेट द विजन बाय सीइंग द स्पिरिचुअल मास्टर। अब राधारानी कैसे भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की वो हमें जानना कठिन है, लेकिन जब हम गुरु को देखते हैं, जैसे आप देखते हैं एक सुंदर तस्वीर हमारे मंदिर के हाल में, राधा और कृष्ण एक झूला में है, सुंदर एकदम सुंदर तस्वीर, बहुत सुंदर वृंदावन का बगीचा है उसमें। अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से वो तस्वीर को देखेंगे तो हमें वासनाएं उत्पन्न होगा हमारे हृदय में, लेकिन वो राधारानी के जगह में हम देखते हैं, हमारे गुरु को देखते हैं, नहीं तो सब आचार्यों को देखते हैं। इसी तरह आचार्यों के हृदय में जो भक्ति भावना है वही भावना है राधारानी के हृदय में, क्योंकि राधारानी के हृदय में जो भावना है वो समुद्र के समान है भक्ति भावना, और हर एक जीव में वो कणकण मात्रा में है वो। इस तरह प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह ये कृष्ण के संबंध में अपने किताबों के द्वारा इन चीज़ों को समझाया है। ये रास पूर्णिमा, इसके दिन भगवान अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इतने रूपों में विस्तारित होते हैं भगवान है। जैसे इस भौतिक दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, भगवान जैसे इतने मात्रा में अपने को विस्तारित करते हैं भगवान। और हर दो, आपने देखा होगा वो रास नृत्य में हर दो गोपियों के बीच में भगवान हैं उनके प्रभाव प्रकाश से। ऐसे ही भगवान जो इस तरह के रास नृत्य करते हैं ये रास पूर्णिमा के दिन, ये भक्ति के सीढ़ी में सबसे ऊंचा सीढ़ी माना जाता है। जैसे शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, उसके बाद माधुरी रस आता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत के दशम स्कंद में पहले भगवान के बाल्य लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं पहले, क्योंकि बाल्य लीला को सुनकर जब हमें हमारे हृदय में भगवान की ओर प्रेम उत्पन्न होगा, उस प्रेम के साथ हम आगे की लीलाओं को हम समझ सकते हैं। और इस तरह भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान को बहुत वैज्ञानिक तरीके से प्रभुपाद जी अपने किताबों में वर्णन करते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे आज, हम जैसे हम श्रीमती राधारानी के बारे में हम बता रहे थे, हम प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह की गोपियों के हृदय में भावना था कृष्ण का स्मरण कर रहे थे जब भगवान जंगल में वृंदावन के जंगल में गए हैं, इस तरह हमारे हृदय जो है जो पत्थर के समान बहुत कट्टर रहता है, तो हमारे हृदय पिघले और हमारे हृदय में भी इस तरह की कण मात्रा में थोड़ा भक्ति भावना उदय हो, और इस तरह की जो सेवा भावना है उनके अंदर भगवान की, ये सेवा भावना हमारे हृदय में उदय हो और भगवान की हम सेवा करें। इस तरह हम प्रार्थना करके हम प्रवचन का हम विराम देना चाहेंगे। और अभी दर्शन खुलने वाला है, लेकिन भक्तों का दर्शन हुआ ऐसे क्यू का अरेंजमेंट करेंगे, तो हम 10 मिनट के लिए इधर ही कीर्तन करेंगे, हम डांसिंग कीर्तन करेंगे। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे भक्त लोग जाइए, सबको दर्शन प्राप्त होगा। कृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की।